एस ऑफ कप्स.
Yes, I am 18.
सुबह उठे मेडिटेशन करना इज टफ.
कहते नहीं है उसको लो जोन वाला बंदा.
पहले बता रहा हूँ कुछ भी पेट
लगने. The most awaited part of this video. लोग एक टाइम के बाद आके सुनना बंद कर देंगे.
Very creative podcast and very creative channel. वो मैं agree करता हूँ. और आप अगर पूछेंगे तो मैं जब आप सामने वाले की रीडिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई भी बॉन्ड नहीं होता, कोई भी कनेक्शन नहीं होता.
So, hey there, what is going on? I am Arvind Singh and welcome to my podcast, hashtag that film guy, जो कि इंडिया का सबसे क्रिएटिव पॉडकास्ट है. यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव क्रिएटिव लोग आते हैं आप लोगों के साथ बात करने, आप लोगों के किसी क्वेश्चन और क्वेश्चन जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर करने के लिए. एंड आज हम लोगों के साथ हैं आयुष गुप्ता, जो कि यंगेस्ट रेकी हीलर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और एक टैरोट कार्ड रीडर है. और हम लोगों ने एक ऑडियो पॉडकास्ट भी किया हुआ है, बट आई गेस शायद काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा वो. तो आज वीडियो पॉडकास्ट लेके आए हैं. टैरो कार्ड कैसे दिखते हैं, रेकी हीलिंग कैसी होती है, हर चीज़ के बारे में बात होगी. तो शुरू करते हैं. वेलकम टू अवर शो ब्रो.
हाय भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है. हम दोबारा वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम ऑडियो पॉडकास्ट किया था तो इट वॉज रियली अमेजिंग एंड बहुत ही मजा आया था. तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस चीज का, तो फाइनली अभी हो रहा है.
एंड काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था आपके साथ वीडियो पॉडकास्ट करने के लिए, बट वो चीज हो नहीं पा रही थी. आप कभी बिजी हो जा रहे थे, कभी मैं भी बिजी हो जा रहा था. आज फाइनली सब लोग साथ में बैठ के अब इसको करते हैं शुरू. और मैंने काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन इस बार रखे हैं. तो जिन लोगों ने ऑडियो जो हम लोग का ऑडियो पॉडकास्ट है उन्हें सुना होगा तो उनको भी काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा. एंड ऑडियो में वैसे भी काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि आपने वो टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन कैसे किया था. तो आज लाइव देखेंगे हम लोग सब कुछ. तो भाई ये बताइए सबसे पहले, आप सबसे पहले हम लोग अच्छा शुरू करते हैं कोविड से, कोविड और रेकी हीलिंग से शुरू करते हैं. तो आप रेकी हीलिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग की ऑडियंस को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को, मुझे 100% इस बात का वो है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में.
आई एग्री, बहुत सारे लोगों को रेकी हीलिंग के बारे में नहीं पता. एंड रेकी हीलिंग एक साइंटिफिकली हीलिंग थेरेपी है. आपने सुना होगा गौतम बुद्ध टच थेरेपी के थ्रू कोई भी तरह की प्रॉब्लम हील कर सकते थे. सो ये वही हीलिंग थेरेपी है. बट ऑफकोर्स एक होता है ना, वो नहीं चाहते थे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चले. तो इंडिया से ये हीलिंग थेरेपी ख़त्म हो चुकी थी. तो 1904 को डॉक्टर मकाओ उसुई, जापनीज हीलर हैं वो, उन्होंने ये हीलिंग थेरेपी रीइन्वेंट की. एंड उन्होंने एग्जैक्टली कुछ सिम्बल्स निकाले साइंटिफिकली प्रूविंग कि इन सिम्बल्स को यूज़ करने से नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं. सो वॉट आर प्रॉब्लम्स वी फेस, लाइक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती हैं वो एनर्जीज की वजह से आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से. तो रेकी हीलिंग के सिम्बल्स के थ्रू नेगेटिव एनर्जीज को हम हील करते हैं. सो दिस इज़ हाउ रेकी वर्क्स. मतलब इसको मैं बहुत ही मैनिपुलेटिव लैंग्वेज में नहीं बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बोला कि ताकि सबको समझ में आए. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेकी.
एंड काफ़ी लोग ये सोचते हैं जो ये रेकी हीलिंग का प्रोसेस होता है ये मेडिटेशन से या फिर ध्यान लगाने से आता है, तो क्या इसमें कुछ ट्रुथ है?
रेकी हीलिंग मेडिटेशन नहीं है, बट जो जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं उसके लिए एक मेडिटेशन टाइप सेशन ही होता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ एक साउंड सुनना होता है फॉर दैट 25 मिनट्स या 30 मिनट्स, जितने भी मिनट्स का वो सेशन होता है. एंड जो प्रोसेस होता है वो हम एज हीलर्स करते हैं, सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, हम नेगेटिव एनर्जीज हील करते हैं, चक्रास बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, क्राउन चक्र, थर्डई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र. तो अलग अलग चक्रास के अपने फंक्शंस होते हैं. एंड देन वी हील ऑरा. ऑरा हमारे बॉडी में जो 5 इंच की लेयर होती है, उस ऑरा को हम हील करते हैं, उस ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इन चक्रास के ऊपर डिपेंड रहती है, इन ऑरा के ऊपर डिपेंड रहती है. लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपका स्टमक चक्र इम्बैलेंस है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आपको इश्यूज क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र में इफेक्ट होगा. एंड वंस आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र में इफेक्ट होता है तो आपके फिर काम में भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. हर एक चक्र एक दूसरे से इंटर कनेक्ट है, तो इन सारे चक्रास का बैलेंस्ड होना काफ़ी जरूरी है. तो रेकी हीलिंग के थ्रू हम चक्रास को बैलेंस करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं. सारी चीज़ें, मतलब उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, बट जो हीलिंग करवाने आता है उसके लिए एक मेडिटेशन टाइप सेशन होता है, उनको मतलब और कुछ करना नहीं है।
अच्छा, जैसे जो लोग आपके पास आते हैं तो उनका तो आप वन ऑन वन सेशन करते होंगे, बट जो लोग बाहर रहते हैं, लाइक मैंने आपकी स्टोरीज में भी काफ़ी देखा था अभी बीच में, आप कोविड पेशेंट्स के साथ उनको ठीक कर रहे थे, उनको हील कर रहे थे, तो उस प्रोसेस के बारे में आप कुछ बताइए कि जो आपसे 1000 किलोमीटर्स दूर है या फिर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उनका आप हीलिंग कैसे करते हो?
सी, रेकी हीलिंग में द बेस्ट पार्ट इज, ये साइंटिफिक है तो मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये मतलब पूरी प्रूवन है ये सारी चीज़ें, एंड इसमें डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, इसमें कुछ डिस्टेंस सिंबल्स होते हैं ताकि आप अगर अवेलेबल नहीं है या आप उतना दूर नहीं जा सकते एंड वो पर्सन प्रॉब्लम में है, या कोई फॉर एग्जांपल मेरा कोई फैमिली मेम्बर बाहर गया हुआ है या किसी का भी फैमिली मेम्बर बाहर गया वो प्रॉब्लम में है, तो हम डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू उसकी प्रॉब्लम हील कर सकते हैं। एंड कोरोना वायरस में ऑफकोर्स हम पास में जाके हीलिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट सेफ, चाहे वो बाजू वाले घर पर भी हो तब भी हम नहीं जा सकते हैं, तो डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू हम कोरोना वायरस में हीलिंग कर रहे हैं। इसके बेसिकली हम डायरेक्टली कोरोना वायरस में नहीं हील करते हैं, हम उनके सिम्टम्स में वर्क करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग इश्यूज हो या स्मेल एंड टेस्ट लॉस हो या जितने भी सिम्टम्स होते हैं, तो हम सिम्टम्स हील करते हैं, एक बार वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, ब्रीदिंग इशूज ठीक हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस हील होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ रेकी हीलिंग वर्क्स इन कोरोना पेशेंट। तो लाइक टच वर्ड, आई एम लाइक 100% श्योर ऑन रेकी, एंड अभी तक 100+ कोरोना पेशेंट्स हील हो गए हैं, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि आगे भी जितने भी केसेस हैं वो केसेस भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।
यस ब्रो, एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, एंड मुझे लिटरली मुझे टैरो कार्ड का तो पता था बट रेकी हीलिंग का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था जो प्रोसेस होता है, बट थ्रू दिस पॉडकास्ट आई लाइक टू शेयर दैट बीच में मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी एंड आयुष गुप्ता को मैंने कॉन्टैक्ट किया था, लाइक फॉर ही जस्ट आस्क्ड फॉर माई फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड उसमें काफ़ी मतलब मुझे एनर्जीज पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही थी, एंड उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, एंड विद इन 2 to 3 days आई गेस इट वॉज बैक टू नॉर्मल, एंड हम लोग यहाँ पे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं आराम से बैठ के तो वो चीज़ हुई थी।
नहीं, डेफिनेटली भाई, सी बेसिकली क्या होता है हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एज आई टोल्ड नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती हैं, तो जस्ट नेम फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ से हम एनर्जीज रीड करते हैं पहले, एंड जितने भी चक्राज हम रीड करते हैं कि कौन सा चक्रा इम्बेलेंस्ड है, कौन से चक्र में हमें ज़्यादा एनर्जी सेंड करना है, तो उस हिसाब से वी यूज़ योर फोटो, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड देन उन चक्राज को हील करना शुरू करते हैं। तो भाई मतलब आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, ये जो भी लाइक होता है पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, सो ऑल थैंक्स टू एनर्जीज, जो भी 100+ लोग ठीक हुए हैं कोरोना से, तो ऑल क्रेडिट गोज टू एनर्जीज ओनली, मैं सिर्फ एक मीडियम हूं, जस्ट अ
100+ कोविड पेशेंट्स,
या
एंड ये मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं बिकॉज़ कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बट मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट्स भी देखे हैं, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं डायरेक्टली आयुष भाई को कि हाँ मुझे इफेक्ट पड़ा है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स फील हुई है।
इवन आई हैव अपलोडेड सम प्रूफ वीडियोस बिकॉज़ सी ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रॉब्लम है जो कोरोना वायरस है, जिस पे हम इवन मैं भी अगर होता तो जब तक मुझे प्रूफ्स नहीं दिखते कि रेकी हीलिंग सच में वर्क कर रहा है तब तक मैं नहीं जाता रेकी हीलिंग करवाने। तो ऑफ कोर्स मैंने प्रूफ वीडियोस मंगवाए हैं, जो भी पेशेंट्स हील हुए हैं तो उन प्रूफ वीडियोस को मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड किया है, एंड इवन स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल जो भी है प्रूफ के साथ है, बिकॉज जब तक जिस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं लोग कर पाते, इवन चाहे वो मेडिकल भी हो, अगर हमारी मेडिसिन में ट्रस्ट नहीं है तो मेडिसिन भी वर्क नहीं करती हैं। सो मेरा मेन मोटिव यही था कि जितना ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट करवा पाऊँ, तो इसलिए मैंने प्रूफ वीडियोज़ भी डाल के रखी हैं, एंड लोगों को ये ना लगे कि मैं इसके थ्रू पैसे कमाने का कोशिश कर रहा हूँ, या क्योंकि लोग लगता है लोगों को लगने लगता है कि सडनली ये कैसे रेकी हीलिंग कोरोना पेशेंट हील कर पाएगा। सो आई एम नॉट इवन चार्जिंग फ्रॉम देम, मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ कोरोना पेशेंट से फॉर देयर रेकी हीलिंग। सो जस्ट डूइंग माई बेस्ट जितने ज़्यादा लोगों को हील कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो एंड लोग ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाए।
तो जो लोग घर पे अभी इस टाइम बैठे हुए हैं, और भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है महाराष्ट्र में, तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, तो ऐसे टाइम पे लोग पॉजिटिविटी कैसे को कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज न्यूज़ चैनल खोलो या फिर सोशल मीडिया खोलो, हर जगह टॉक्सिसिटी तो भरी हुई है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे?
सबसे पहले तो भाई
न्यूज चैनल्स हटवा लिया जाए टीवी से अगर पॉजिटिव रहना है तो सबसे मेन काम है मतलब पूरा घर पॉजिटिव रह सकता है इस चीज़ से. एंड लाइक जोक्स अपार्ट सेकंड थिंग ऑफकोर्स सी लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोगों पे जब नॉर्मल डेज में मैं लोगों को बोलता था मेडिटेशन के लिए तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है हम जो भी चीज़ 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं वो चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है. दैट इज लाइक इट्स प्रूवन मतलब आप गूगल में सर्च करिएगा कि अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट बनानी है तो उसके लिए क्या करना होता है. तो अगर हम जो भी काम 21 डेज तक लगातार कंटिन्यू सेम रूटीन में करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है. सो अभी ऑफकोर्स जैसे आपकी सिचुएशन चल रही है अभी लॉकडाउन चलने वाला है 1-2 महीने और मोस्टली June 15 तक मुझे मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा. तो आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करिए. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा वो एक ऑफकोर्स डिस्कम्फर्ट मैं इवन आई एग्री कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना इज टफ. तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि मेडिटेशन सुबह उठ के करें क्योंकि मेडिटेशन मेन क्या होता है कि आप कम्फर्ट जोन में रहने चाहिए. तो आप किसी भी टाइम में उठें आप मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा एंड आपको पूरे दिन आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र को स्पेशली बैलेंस रखेगा. तो अगर आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र जो कि क्राउन चक्र ये और थर्ड आई चक्र थॉट प्रोसेस के लिए होता है तो अगर वो चक्रास एक्टिव हैं तो आप पूरे दिन में नई नई चीज़ें सोच सकते हैं नए आइडियाज ला सकते हैं एंड अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकेंड थिंग अभी ऑफकोर्स पॉजिटिव रहने के लिए आपको किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सी पॉजिटिव रहने की और खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि कनेक्शन वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है ह्यूमन टू एनिमल्स भी हो सकता है. एंड बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कुछ ह्यूमंस प्लांट्स के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं. तो पॉजिटिविटी समथिंग कि आप कहीं से भी मिल सकती है आपको पॉजिटिविटी. एंड द मेन थिंग आप कितनी भी चीज़ें कर लें मेडिटेशन कर लें कनेक्शन बना लें बट अगर आपके माइंड में ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं है अगर आपके माइंड में एक थैंकफुल फीलिंग नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकते. तो सबसे बड़ी बात यह है कि कीप अ ग्रेटिट्यूड फीलिंग फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ. तो आपको वो मतलब भले ही चीज़ें थोड़ी इम्बेलेंस चल रही होंगी लाइफ में बट अगर वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग है आपके साथ तो आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ नेक्स्ट स्टेप ले सकते.
अच्छा ब्रो तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो मेडिटेशन करना चाहते हैं और बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज आई गेस जितना मुझे पता है मेडिटेशन के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं जिसको आप लोग अचीव कर लो तो लाइक उस वो वर्ड मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है जिसमें आप लोग संसार की मोहमाया छोड़ देते हो एंड मटेरियलिस्टिक बेसिकली मटेरियलिस्टिक नहीं रहते हो आप लोग किसी चीज़ का वो
एनलाइटमेंट.
तो बिगनिंग से किसी को अगर शुरू करना है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी.
सी भाई मैंने एक बुक पढ़ी है आपने सुना सी मैंने एक बुक पढ़ी है जय शेट्टी की आपने सुना होगा डोंट बी अ मॉन्क बी लाइक अ मॉन्क. तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप संन्यास ले लें या ये सब क्योंकि देखिए ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल मतलब इम्प्रैक्टिकल नहीं बोलूँगा मैं बट जो कि आप अगर आपको ये लाइफ मिली है जहाँ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाइफ को ही कंटिन्यू रखें उस मेंटेलिटी के साथ ये लाइफ जी. So be yes. like a monk, don't be a monk. तो मेडिटेशन के लेवल्स होते हैं तो अगर बिगिनर्स को अगर मेडिटेशन शुरू करना है तो दे कैन स्टार्ट विथ 7 मिनट्स मेडिटेशन. मैं आपको वो साउंड लिंक भेजूँगा तो आप वो साउंड लिंक भी डाल सकते हैं लिंक पे. तो वो 7 मिनट्स से शुरू कर सकते हैं एंड एज आई टोल्ड कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है फिलहाल एटलीस्ट स्टार्ट में क्योंकि स्टार्ट में हर चीज़ हमें कम्फर्ट जोन में चाहिए होती है. तो स्टार्ट में कितने बजे भी उठिए मतलब आई नॉट से कि 2-3 बजे उठिए बट जितने बजे भी नॉर्मल आप उठ सकते हैं जल्दी उठ सकते हैं जल्दी उठिए नॉर्मल टाइम पे एंड वो 7 मिनट्स का मेडिटेशन शुरू करिए एंड वो एटलीस्ट 21 डेज करिए एंड 21 डेज के बाद वो 7 मिनट्स आप 15 मिनट्स में कर लीजिए फिर उसके नेक्स्ट 21 डेज बाद आप उसको 15 से 20 मिनट्स कर लीजिए एंड उसके बाद आपको लगेगा कि आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए मुझे अपना रूटीन चेंज करना चाहिए. और वो ऑटोमेटिकली क्योंकि अगर हम एक बार मेडिटेशन करने लगते हैं ना तो लाइफ हमें ऑटोमेटिकली करेक्ट गाइड करना शुरू कर देती है. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन. तो उसके लिए एक बार हमने अगर मेडिटेशन शुरू कर दिया 21 डेज 30 डेज तो उसके बाद हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेडिटेशन में. मेडिटेशन की एनर्जीज हमें ऑटोमेटिकली गाइड करती है.
राइट. अच्छा तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे रिकी हीलिंग के बारे में तो आपने ऑडियो पॉडकास्ट में तो सब कुछ बताया है बट एक बार शॉर्ट में आप हम लोग की ऑडियंस को यहाँ भी बता दीजिए कि ये आपने रेकी हीलिंग की ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई थी और आपने ये चीज़ें सीखी कहाँ से थी.
सी जर्नी भाई, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी. मे बी मैं मतलब इसको एनर्जीज को ही थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली मेरे पापा मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता, उन्होंने ही मुझे 7-8 years से मेडिटेशन करना शुरू करवाया था. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर हम एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एनर्जीज हमें ऑटोमेटिकली गाइड करती है. तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया था एंड उसके बाद मुझे कहीं से रेकी के बारे में पता चला. मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला, उन्होंने मुझे रेकी सिखाई एंड मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था. ऑफकोर्स मैं 12 साल का था उस टाइम, तो 12 साल में एक मेंटालिटी होती है ना, ठीक है सीख लेते हैं देखेंगे. तो मैंने उस हिसाब से सीखा था, बट उसके 4 से 5 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट में कुछ सीवियर इशू आ गया था एंड बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने डायग्नोज करवाया, तो कैंसर डायग्नोज हो रहा था. सो वहाँ मैंने 3 से 4 महीने तक उनके थ्रोट में हीलिंग दिया एंड उसके बाद तो हम डायरेक्टली नागपुर में उनका दोबारा डायग्नोज करवाने गए एंड वो डायग्नोज में कैंसर निकला ही नहीं एंड वो 100% ठीक हो गई थी एंड डॉक्टर्स ने बोला कि इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा मत आइए. तो रेकी हीलिंग से कनेक्ट होने का 2 बड़े लाइक इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे लाइफ में. पहला तो ऑफकोर्स मॉम का इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आना एंड सेकेंड थिंग कि अगर हम लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं कैंसर जैसी या इतना सीवियर इशू जो थ्रोट में था, तो बहुत सारे लोग छोटे इशूज़ या बड़े इशूज़ से परेशान हैं, तो उनको हील करना ज़रूरी है. वो अगर ठीक होंगे तो वो मैं करना चाहता था बेसिकली, ताकि सबकी प्रॉब्लम सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मतलब सारी प्रॉब्लम्स तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, बट एटलीस्ट उनका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम कर सकता हूँ, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई मैंने ये जर्नी चूज़ की एंड वहाँ से जर्नी कंटिन्यू हुई. मैंने बहुत सारे कैंपेन्स किए ऑल ओवर इंडिया एंड देन मैं बेसिकली जबलपुर का हूँ, बट नाउ फ्रॉम पास 6-7 years मुंबई शिफ्ट हो चुके हूँ विथ होल फैमिली. तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आई गॉट लॉट ऑफ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स लाइक रेमो डिसूजा, कपिल शर्मा, बलराज सियाल, शोभित सिन्हा एंड मैनी मोर. सो एंड इवन मुझे यंगेस्ट रेगी इधर का अवार्ड मिला.
हाँ भाई, तो मैं ये पूछ रहा था, जब अमिताभ बच्चन सर ने आपको अवार्ड किया, अवार्ड दिया, तो उस टाइम कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? बिकॉज ही सच अ ह्यूज सेलिब्रिटी और सब लोगों का सपना होता है उनको देखना.
भाई वो एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ लाइफ के बेस्ट 25 मिनट्स थे. बिकॉज एक होता है भाई, अगर हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन हो जिसने लाइफ में हर एक फेज देखा हो और लाइफ में अभी वो सदी के महानायक हैं, तो उनके सामने खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. एंड उनके हाथ से मुझे यंगेस्ट रेकी हीलर का अवार्ड मिला, तो वो एक और सोने पे सुहागा था. एंड देन बेस्ट पार्ट की जब उनके उन्हें पता चला कि आई डू रेकी हीलिंग एंड मैं एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा था, उस टाइम मैं सोने पे सुहागा कि बेसिकली वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से कनेक्टेड थे. उन्होंने मुझे बताया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ के बारे में पता है उन्हें, तो एनर्जीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ एंड हमारा मतलब मेरे लिए एक लाइफ का बेस्ट चांस कि उन्होंने मुझे बोला कि लेट्स डू अ रेकी सेशन. तो वो एक लाइफ की बेस्ट फीलिंग थी कि द ग्रेट लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन सर इज सेइंग मी टू डू अ रेकी सेशन. तो वहाँ एक मुझे लगा कि या आई अचीव समथिंग. वो एक्चुअली काफ़ी एनकरेजमेंट भी मिलता है जब ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं. तो फिर हमने 25 मिनट्स का एक रेकी सेशन भी किया एंड उन्हें काफ़ी पसंद आया वो रेकी सेशन. एंड उसके बाद आई होप कि बहुत जल्द उनसे मिलने का मौका हो.
ब्रो नेक्स्ट टाइम मैं भी भाई मेरा क्वेश्चन क्या था?
ये बात कैसे चल रहा है इतने सारे?
हाँ सॉरी. तो आयुष भाई, ये आपकी रेकी हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग की जर्नी जो आपने चूज करी है, ये जो पाथ आपने चूज करा, ये अब तक कैसा जा रहा है आपका?
भाई मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये लोगों की प्रॉब्लम्स सुन के उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करने का जो एक मेरा रेगुलर चीज बन चुकी है, तो वो मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है. लोगों की जब प्रॉब्लम्स ठीक होती है उनका कॉल आता है कि सर ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है या ये प्रॉब्लम से अब मुझे दोबारा लड़ना नहीं पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो गई है. और जो उनके फेस में स्माइल होती है, जिस स्माइल के साथ वो खुशी से बताते हैं, उस स्माइल से बढ़कर आई गेस लाइफ में कोई भी कमाई नहीं है. उस लाइफ से बढ़कर, उस स्माइल से बढ़कर कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है हमारी लाइफ में. तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप किसी की मदद करते हैं, उससे सामने वाले की जब किसी की कोई प्रॉब्लम ठीक होती है और जिस स्माइल के साथ वो थैंक यू बोलते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे बढ़कर हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता है. उस हिसाब से आई कैन से दिस जर्नी इज रियली गोइंग अमेजिंग. अपने आप को और भी लाइक समर्पण बोलते हैं, समर्पण या 100% अपना देना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम ठीक कर पाऊँगा. आई वुड लव टू डू दैट एंड होप कि आगे भी जो भी प्रॉब्लम्स आए मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और उनकी प्रॉब्लम्स ठीक कर पाऊँ.
Right, definitely. And we wish you all the best कि आपकी लाइफ जर्नी काफ़ी आगे जाए. हम लोग आपको काफ़ी चीज़ें अचीव करते हुए देखें और भी. एंड इसी लोग के साथ एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लाइक अपनी ऑडियंस के साथ. पता नहीं मैं ये डालूंगा कि नहीं, बट मेरा एक पेज है कानपुर फूडीज़ के नाम का, एंड जहाँ पे हम लोग फूड रिलेटेड कंटेंट डालते हैं. बट आजकल क्या हो रहा है कि लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को बेड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, हम लोग को इस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है. तो और जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं या फिर फार्मेसी कंपनी है वो भी हम लोग को मैसेज करते हैं कि हम लोग पास अवेलेबल है ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, आप ये ऑडियंस को बताइए. काफ़ी बार होता है कि चीज़ें मिल जाती हैं, हम लोग डिलीवर कर पाते हैं वो लीड और वो सही निकलती है लीड. बस कभी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदा सामने से फ़ोन नहीं उठा रहा होता है या फिर वो चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, बिकॉज 5-5, 10-10 मिनट में यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं. जब तक हम लोग वेरीफाई करते हैं और जब तक बेचते हैं तब तक दिक्कत हो जाती है, वहाँ उनके पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है. तो वो लोग गाली भी देते हैं कि नहीं मिल रहा है, तुम लोग और परेशान कर रहे हो. तो ये टॉक्सिसिटी और ये इन सब चीज़ों से आपकी कभी डीलिंग हुई है
भाई? I didn't want to say, but पिछले 20 डेज से यही चीज़ चल रही है मेरे साथ. एंड मैं कहूँगा जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक शोभित सिन्हा सर एंड मैनी मोर, जितने भी हम लोग कनेक्टेड हैं, एंड हम सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलके हमारे पास DMs आ रहे हैं कि ये अवेलेबिलिटी चाहिए. एंड दिन में वी आर अपलोडिंग मोर देन 100-150 स्टोरीज, लाइक मोर देन की वो कल की स्टोरीज आज ख़त्म हो रही है, आज की स्टोरीज ऐसा हो रहा है. तो दिन में लाइक बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद भी हम उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मिल भी नहीं पा रहा है. तो ये सारी चीज़ें, तो अभी हम भाई ये सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि हम इससे डील हम ऐसे ही कर सकते हैं. दिस इज़ लाइक मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं अपने, हम अगर किसी एक की भी मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए. एंड भाई अभी हमारे हाथ में सिर्फ यही है, हम लाइक डिस्टेंस में हम जितना कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं हमें डेफिनेटली करना चाहिए. और आसपास या दूर आप अगर किसी एक की भी मदद करते हैं तो उसे की जान बचा रहे हैं आप. तो बस उसी इंटेंशन के साथ आप उसकी मदद करें. एंड भाई लोग हर एक चीज़ में बोलते हैं आप अच्छा काम करते हैं, तब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या आपको लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं. सो जस्ट डोंट फोकस ऑन देम. बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेंटालिटी होती है, इंडिया में चाहे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं. तो हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका इंटेंशन सही है, आप अगर अच्छे मेंटालिटी के साथ वो काम कर रहे हैं तो जस्ट डू इट. किसी की भी मत, मैं तो कहूँगा तारीफें भी मत सुनो आप सिर्फ करते रहो.
राइट,
तो अगर हम तारीफ नहीं सुन रहे हैं तो बुराई क्यों सुने यार भाई, कुछ गलत तो कर नहीं रहे. सो जस्ट डू इट एंड लीव इट, दैट्स इट.
ये मैसेज उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट करेगा जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं. चाहे तुम इन्फ्लुएंसर ना हो बट तुम लोग उन चीज़ों को शेयर कर सकते हो जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, फिर एटलीस्ट एक स्टोरी डाल सकते हो कि शायद से तुम्हारे कॉन्टैक्ट में भी.
मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 दिनों से बहुत सारे लोग, मतलब नॉट इवन जितने लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं है या जो इंस्टाग्राम में है या फेसबुक में है, मेरे कॉन्टैक्ट में तो मोस्टली लोग आगे बढ़कर हेल्प कर रहे हैं. एंड बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. सो आई विश कि बिकॉज वी आर टुगेदर इन दिस फाइट भाई, एंड वी विल डेफिनेटली विन इट, एंड सारी चीज़ें बहुत ही जल्द बेहतर होंगी. तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी को जो अपना एक स्टेप भी या अपना 1% भी दे रहे हैं इस चीज़ में. तो प्लीज़ डू इट एंड थैंक यू वंस लाइक फ्रॉम माई साइड.
अच्छा, हम लोग के पास थोड़ी सी अभी टाइम की बाउंडेशन है, वरना हम लोग काफ़ी बातें करते हैं ऐसे. तो जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को चेंज करते हैं एंड आ जाते हैं टैरो कार्ड रीडिंग पे. तो यस द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. एंड वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है हर जगह, तो क्या कर रहे हो कि पॉडकास्ट सुनो, आराम से कुछ चीजें जानने को मिलेंगी. एंड लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था तो उस टाइम मैं देख ही पाया था टैरो कार्ड आपने कैसे की था, कैसे वो सेशन किया था आपने, कैसे क्वेश्चन किए. ओह आ गया,
ये है कार्ड्स भाई मेरे हाथ में. जब मैं वेट कर रहा था कि हाँ अभी बोलेंगे अरुण भाई तो हम टैरो सेशन करेंगे,
यहाँ पे वो मीम डाल सकते हैं, हम वेट ही कर रहे थे.
ये कार्ड्स होते हैं भाई. बेसिकली ये कार्ड्स होते हैं, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं. एज ए मतलब मैंने इसके बारे में बताया भी था पॉडकास्ट में, तो इसके हर एक कार्ड शो मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स दिखाता हूँ. जैसे कि ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो इसके हर एक जो इसमें मीनिंग्स हैं, हर एक जो इसमें डायग्राम्स हैं, हर एक सिंबल के अपने अपने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो एक कार्ड के 15-20 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. इन कार्ड्स को हम आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो से अगर हम डिस्टेंस सेशन कर रहे हैं, और अगर हम वीडियो कॉल पे या सामने कर रहे हैं तो फोटो की जरूरत नहीं होती है. उससे हम इन कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं, आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज इन कार्ड्स में लेते हैं. एंड देन यू पिक अ कार्ड. अगर हम सामने हैं या वीडियो कॉल पे हैं तो आप कार्ड्स पिक करते हैं. एंड देन ये चीजें आपको फिर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है.
तो ये 78 कार्ड्स आपको याद है, मतलब किस कार्ड का क्या मीनिंग होता है सारे?
भाई आपने एक बहुत ही अच्छी यादें दिलवा दी, क्योंकि वो आई गेस मुझे 3 महीने लगे थे सारे कार्ड्स याद करने में.
अच्छा.
एंड सारे कार्ड्स याद नहीं, बट मैं बेसिकली दिल से मुझे करना था ये कार्ड, क्योंकि देखिए मैंने रेकी हीलिंग सीखी थी एंड उसके बाद मैंने ये सोच किया था कि मुझे कुछ इसी फील्ड में करना है. इन लोगों के लिए जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा. तो मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था कि मैं क्या सीखूँ, तो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग पिक किया. एंड मैंने ऐसी डायरेक्टली नहीं सीखा ये कार्ड रीडिंग, बिकॉज भाई इफ़ अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहे हैं तो आप कुछ होप्स के साथ आते हैं, आप कुछ माइंड में लेकर आते हैं कि हाँ ये आगे जाके हमें कुछ हेल्प करेगा. तो जब तक मैं उस चीज़ में श्योर नहीं हो सकता तब तक मैं दूसरों के लिए वो चीज़ नहीं करता हूँ. तो मैंने खुद पे टैरो कार्ड रीडिंग आजमाई, खुद पे टैरो कार्ड रीडिंग करवाई मेरे ग्रैंड मास्टर से. एंड विद इन 3 मंथ्स मुझे उसके लिटरल रिजल्ट्स दिखे, जितने भी उन्होंने मुझे आंसर्स दिए थे, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, क्योंकि मुझे जल्दी तो थी सीखने की. मैंने लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस पूछे थे. एंड वो चीज़ 101% एक्यूरेट हुई मेरे साथ मेरी लाइफ में. सो दैट्स व्हाई मैंने टैरो कार्ड रीडिंग चूज़ की. एंड टचवुड अभी तक मैंने 20,000+ रीडिंग्स की है, इंक्लूडिंग मेनी सेलेब्स. तो अभी तक 100% एक्यूरेट आंसर्स आए हैं, होप कि फ्यूचर में भी एक्यूरेट आए.
दैट्स नाइस. अच्छा इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों के माइंड में भी आता होगा, कि जैसे आपके पास लोग आते हैं टैरो कार्ड सेशन करवाने के लिए, जब आपको अपनी लाइफ में कुछ आंसर्स चाहिए होते हैं तो आप क्या खुद ही से वो सेशन करते हो, या फिर आप अपने किसी मास्टर, आपके मास्टर जो है जिन्होंने आपको सिखाया आप उनके पास जाते हैं?
बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग में एक रूल है कि हम रूल नहीं बट ये एक अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज हमें बताया गया है कि हम खुद की टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली ये सारा एनर्जीज का ही खेल है, एनर्जीज का ही सारे चीज़ें हैं. तो हम फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है टैरो में, बस जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने अगर पूछा कि मैं 12th में पास होऊंगा या नहीं, तो माइंड में मेरे वही चलेगा ना कि पास तो होना ही, ऑफकोर्स कौन चाहेगा फेल होना. तो मैं खुद की रीडिंग करूँगा तो एनर्जीज उस हिसाब से कार्ड्स आते हैं, उस हिसाब से एनर्जीज आंसर करती है. तो और आप अगर पूछेंगे तो मैं जब आप सामने वाले की रीडिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई भी बॉन्ड नहीं होता, कोई भी कनेक्शन नहीं होता. तो मुझे उस टाइम पे आई एम वेरी नॉमिनल, मतलब मैं अपने तरफ से बिल्कुल एक न्यूट्रल होता हूँ कि कोई भी आंसर है मुझे जस्ट बताना है. तो खुद की हम रीडिंग नहीं कर सकते, तो आई गो टू माई ग्रैंड मास्टर, उनसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग सेशन करवाता हूँ. सो बहुत ही मतलब मैं मोस्टली 4-5 महीने में एक बार टैरो रीडिंग सेशन करवाता हूँ.
Okay.
जब भी कोई क्वेश्चन आता है माइंड में.
तो इसी नोट के साथ हम लोग एक क्विक सा टैरो कार्ड सेशन रखते हैं. लास्ट टाइम जब हम लोग किया था तो काफी पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे थे मैंने, बट आयुष ब्रो तो हम लोग सेशन शुरू करें.
डन डन भाई, आपका मुझे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन लगेगा जो आपको क्वेश्चन पूछना है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे पूछिए एंड देन विल आंसर.
ओके, तो मैं क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन एक ही बार में बताऊं कि मतलब एक एक करके, बिकॉज लास्ट टाइम तो एक साथ ही पूछ लिए थे मैंने क्वेश्चन सारे.
सो हम लोग अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सो आपका फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, तो उस हिसाब से.
ठीक है ठीक है ठीक है. एंड ब्रो आप कैमरे में मुझे सब कुछ दिखाते हैं ना, मुझे बहुत वो होता है जानने के लिए सब आप कैसे करते हो. ओके सो माय फुल नेम इज आर्यन सिंह एंड डेट ऑफ बर्थ इज 12 September 2002. यस आई एम 18.
एंड फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग आई एम आल्सो 18.
ओके हाई फाइव ब्रो दूर से.
सो एक बार फिर से आप डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज, क्योंकि हाँ,
इस बार सीरियसली सो माय डेट ऑफ बर्थ इज 12 September 2002.
ओके भाई आपका फुल क्वेश्चन, मतलब जो आप क्वेश्चन है.
ओके सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय फ्यूचर, लाइक जो मैं ये काम कर रहा हूँ या फिर मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो क्या उसमें मुझे आगे जाके क्या कुछ फेस करना पड़ेगा और इसका एंड क्या होगा आपके लगा के.
ओके सो बेसिकली मैं कार्ड्स ऐसे स्प्रेड कर रहा हूँ, बेसिकली वो दिख नहीं पाएगा बिकॉज नीचे टेबल थोड़ा नीचे है. मैं कार्ड्स स्प्रेड कर रहा हूँ एंड देन आई विल डू दिस बिकॉज एज आई टोल्ड वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, तो मैं ऐसे करूँगा तो यू हैव टू से मी स्टॉप. सो हम दो कार्ड्स पिक करेंगे इसके लिए.
Stop.
Okay. See the card is Judgment and दूसरा card है Ace of Cups. So Judgment card is basically showing कि देखिए जैसा आपने question पूछा उस card के हिसाब से ही ये question आया, उस question के हिसाब से ये card आया है. And Judgment is basically showing जितने भी आप अपने hard works, अपने efforts लगा रहे हैं इस चीज़ में, जो भी आप कर रहे हैं podcast या आई नो बहुत सारी और भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ों का आपको डेफिनेटली जजमेंट मिलेगा और उन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा बिकॉज इन चीज़ों में आपके पास डेफिनेटली एनर्जीज का सपोर्ट है. बिकॉज इसमें एज यू कैन सी एनर्जीज का लोगो है, एंजल्स का लोगो है एंड द ऑडियंस देयर, द पीपल देयर आर हैप्पी. सो बेसिकली एनर्जीज जो आपको दे रही हैं उससे आपको खुशी मिलेगी, तो ऑफकोर्स रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा, आउटकम काफ़ी अच्छा होगा. दूसरा है एस ऑफ कप्स. बेसिकली दिस कार्ड इज शोइंग की जो भी आप चीज़ करेंगे उसका अचीवमेंट 101% है, उसके बाद डाउनफॉल कभी नहीं है. तो द बेस्ट पार्ट कि आपके करियर में डाउनफॉल नहीं है देखना पड़ेगा आपको. एंड मोस्टली बाय कुछ समय के बाद, नियर फ्यूचर मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कल से लेकर 6 महीने के अंदर, कभी भी आपके पास एक सडनली मे बी जो चीज़ आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं पूरी हो पा रही थी. तो एक्सपेक्टेशन आपको दिखेगा कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, उसके लिए आपको एक पाथ मिल गया है कि इस पाथ में चलकर वो एक्सपेक्टेशन 100% क्लियर होंगी एंड वो एक्सपेक्टेशन 100% फुलफिल होंगी. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर करियर वाइज आई कैन से.
ओके
एंड एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट एनर्जीज वाइज एज पर मैंने रीड किया है, सो नॉट बाय टैरो रीडिंग बस जस्ट एन ऑरा वाइज, सो यू आर एक्चुअली डूइंग वेरी अमेजिंग. देखिए मैं पहले बता रहा हूँ उसमें कुछ भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है तारीफ करने का, बट यार मतलब जो मैंने एनर्जीज फील किया है इट्स रियली अमेजिंग एंड भाई कंटिन्यू करते रहो. एंड जिस हिसाब से आप हार्ड वर्क करते हैं, आप अलग अलग लोगों के अलग अलग फील्ड्स के लोगों को मिला के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ फन, सिर्फ ऐसा नहीं कभी कभी पॉडकास्ट में होता है कि सिर्फ सीरियस टॉपिक चलता रहता है, वो इस पॉडकास्ट में सारे ही जॉनर्स मिलते हैं. इन्फॉर्मेटिव होता है, फन सेगमेंट होता है एंड वो एक काफ़ी क्रिएटिव चीज़ लगता है इस पॉडकास्ट के बारे में, इस वीडियो आपके चैनल के बारे में. सो आई जस्ट
बस भाई यही है ना कि अगर बिल्कुल सीरियस करते रहेंगे तो लोग एक टाइम के बाद आके सुनना बंद कर देंगे, तो हर चीज़ दिखानी पड़ती है. लाइक इसमें जैसे हंसी मजाक भी हो रहा है बीच बीच में, हम लोग सीरियस टॉपिक से कोई बात कर रहे हैं.
वेरी क्रिएटिव पॉडकास्ट एंड वेरी क्रिएटिव चैनल, वो मैं एग्री करता हूँ. तो आई जस्ट कीप इट कंटिन्यू करते रहिए.
थैंक यू ब्रो. अच्छा माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने सिर्फ तीन क्वेश्चन सोचे थे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो, बिकॉज काफ़ी काम होगा आपको भी. माय सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट, डू यू सी एनी नेगेटिव भूल गया मैं. कैन यू सेंस एनी नेगेटिव एस्पेक्ट अबाउट मी?
एस्पेक्ट इन विच वे?
इन अ पर्सन.
भाई एज आई टोल्ड एनर्जीज हिसाब से मैंने रीड किया तो डेफिनेटली नॉट. मतलब ये तो आई कैन से मुझे टैरो में भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सो आई कैन से डायरेक्टली कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव तो डेफिनेटली नहीं है. जस्ट कभी कभी कुछ चीज़ें आई कैन से कुछ रीजंस के वजह से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो जस्ट सी कि वो डिमोटिवेशन आपको अफेक्ट ना करे. एंड यू आर अ पर्सन की 10 लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑडियंस 10 है तो अगर 9 लोग आपकी तारीफ करते हैं तो जो एक पर्सन होता है 10वां पर्सन, अगर वो आपको कुछ नेगेटिव बोलता है तो आप उन वो 9 लोगों को भूल के उस एक बंदे की बातों से अफेक्ट हो जाते हैं. सो जस्ट सी कि उस एक बंदे की, इस एक पर्सन की बात अफेक्ट ना हो, बाकी 9 लोग जो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं उस पर आप फोकस करिए. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप 10वें बंदे को इग्नोर कर दीजिए, आप जस्ट सुनिए. एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं जिसमें मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट आप करिए. अदरवाइज 9 लोग तो तारीफ कर ही रहे हैं, तो जस्ट सी कि डीमोटिवेट ना हो दूसरों की वजह से. बिकॉज आई कैन से आप खुद के जैसे डीमोटिवेट नहीं होते, दूसरों की वजह से ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं. तो जस्ट सी कि ये चीज़ ना हो, अदरवाइज थिंग्स आर गुड. एंड ओवर थिंक मत करिए किसी भी चीज़ को लेकर. आई कैन से दैट थोड़ा ओवर थिंकिंग इशूज़ हैं, ओवर थिंक मत करिए ज़्यादा.
ब्रो आपने अभी लास्ट के 2 मिनट में जो जो बातें बोली ना 100% मतलब बिल्कुल सही है ये सब चीज़ें. मतलब ओवर थिंकिंग हो जाती है काफ़ी बार और वो 1% लोगों की वजह से ही होती है.
भाई बस वही 1% लोगों से जीतना होता है हमें. एंड उन 1% से जीतना भी नहीं होता, आई गेस वो हमारे कॉम्पिटिशन में भी नहीं होना चाहिए. जस्ट सी कि अगर आपको लगता है उसका पॉइंट सही है तो जस्ट इम्प्रूव, जस्ट पुट अ इम्प्रूवमेंट पॉइंट इन योरसेल्फ. उस चीज़ को इम्प्रूव कर लीजिए. उस चीज़ का ऐसा नहीं कि आप उसमें डीमोटिवेट होकर बैठ जाएँ या कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. तो जस्ट डोंट ओवर थिंक ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. एंड थोड़ा बहुत नॉर्मल लाइफ है भाई, ह्यूमन लाइफ है, थोड़े बहुत इशूज़ तो आते रहते हैं, तो जस्ट इग्नोर दोज नॉर्मल इशूज.
मतलब होता है काफ़ी बार कि ओवर थिंकिंग के चक्कर में रात रात भर या फिर 2-3 घंटे ऐसी कुछ भी सोच रहे हो और लास्ट में उसका आउटकम भी कुछ नहीं निकलता है. एंड आई वाज लाइक कि सोच क्यों रहा था मैं. तो चीज़ें सही हो जाती है मगर वो उस फेज के लिए, उस टाइम के लिए कोई होता नहीं है बात करने के लिए.
भाई ये थोड़ा कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है, जस्ट सी कि भाई अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी करते हैं एंड ऐसे चीज़ों में ओवर थिंक ना करें तो बेटर होगा.
एंड इसी के साथ ब्रो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मुझे पूछना तो काफ़ी कुछ है बट ठीक है इसको लास्ट क्वेश्चन के साथ रखते हैं.
बिहाइंड सीन हम वो क्वेश्चन दे सकते हैं. आई नो कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी मतलब आप चाहें तो ये कट कर सकते हैं, बट या मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ तो थोड़ा
डेफिनेटली
तो वो हम लोग ऑफ कैमरा भी कर लेंगे उसी.
नहीं डेफिनेटली ब्रो, लास्ट क्वेश्चन से पहले बस मुझे एक लाइन ऐड करनी है कि मैंने ये डिफरेंट यूनर्स के लोग डिफरेंट यूनर के लोगों को अपने पॉडकास्ट में लाना इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे खुद के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे. मुझे लोगों से जानना था कि अच्छा इसने एक्टिंग परस्यू करी है, क्यों करी है. 10 लोग मतलब 10 में से 9 लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं अपनी, जो उस फील्ड में जा रहे हैं जो उनको बचपन से सिखाई जा रही है, इसने अलग क्यों किया, इसने अलग ऐसा क्यों किया, इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये दूसरों से अलग कर पा रहा है और अभी भी टिका हुआ है. तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए तो काफ़ी कुछ क्रेज आता था, तो इसी का वो रीज़न था पॉडकास्ट
के बारे में कि बहुत ही पॉजिटिव लाइन बोली आपने ये चीज़, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस सुन के ही सीखता है. एक नॉर्मल बुक का नॉलेज तो हमें होता ही है, बुक का नॉलेज कहीं ना कहीं काम आता है, बट अगर आपको कुछ रियल चीज़ें सीखनी है लाइफ की, रियल गोल्स के बारे में या रियल फोकस के साथ कुछ चीज़ें सीखनी है हमें, वो हम चीज़ें एक्सपीरियंस सुन के, एक्सपीरियंस लोगों से एक्सपीरियंस सुन के ही सीख पाते हैं. तो अगर आपने इस मेंटालिटी के साथ ये पॉडकास्ट और ये चैनल शुरू किया तो सीरियसली क्लैप फॉर यू, बिकॉज ये बहुत ही कम लोगों की मेंटालिटी होती है कि एक्सपीरियंस से सीखना, बिकॉज सब अपने आप को, मतलब आज के टाइम पे सब अपने आप को सबसे ऊपर समझता है कि हमसे ऊपर, हमसे सब नीचे हैं, हमसे कोई ऊपर नहीं है. सो ग्राउंडेड होके लोगों के एक्सपीरियंस सुन के अगर आप कुछ चीज़ें सुन रहे हैं या सीख रहे हैं भाई, यही एक रीज़न है दैट यू आर ग्रोइंग एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो इन योर लाइफ. आई कैन लाइक से यू 100% दिस.
थैंक यू ब्रो. एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी है ये इस पॉडकास्ट का. डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे आयुष गुप्ता से, बट इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एंड ब्रो माई लास्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर टू द वन क्वेश्चन विच आई हैड आस्क्ड इन फ्रॉम यू इन द अर्लियर पॉडकास्ट एज वेल. इसको मैं रीड कर लेता हूँ, मैंने लिख के रखा था और मैंने 3 दिन पहले ये लिख के रख लिया था जब मैं स्क्रिप्ट ये रेडी कर रहा था. एंड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन होंगे, मैं अपने लिए स्क्रिप्ट करता हूँ. 3 साल पहले जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, सो उस टाइम पे मैंने सही किया था वो डिसीजन लेके या फिर नहीं, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ें नहीं करी थी जो हुई थी. तो ये मेरा क्वेश्चन है कि वो चीज़ें मैंने सही करी थी उस सिनेरियो के हिसाब से या फिर नहीं, एंड वो अभी की लाइफ को कैसा इफेक्ट कर रहा है.
तो भाई हम 2 कार्ड्स पिक करेंगे. सो आपको सिर्फ स्टॉप बोलना है, तो मैं एक बार कार्ड्स ट्रांसलेट करता हूँ, देन यू हैव टू सी स्टॉप. यस भाई,
स्टॉप स्टॉप.
ओके भाई, द कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड Four of Pentacles. So actually ये cards काफ़ी positive and I can surely say you 100% कि आपका जो उस time decision था वो 101% सही था. And कहीं ना कहीं I can say वो चीज़ आपको इतनी affect की है कि आपने अपने life के बहुत सारे बड़े decisions लिए हैं आपने उस समय में. So that was a very good thing, क्योंकि वो एक ऐसा point था, अगर आप उस चीज़ को continue करते तो ना आप खुश रह पाते ना ही वो खुश रह पाती. बट वो रिलेशनशिप आप चाहते तो कंटिन्यू रख सकते थे, बट इट वॉज अ गुड थिंग कि आपने उसे कंटिन्यू नहीं किया एंड वो चीज़ को आपने वहीं रोक दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपको आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती एंड ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते. एंड कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आप कर पा रहे हैं उस डिसीजन की वजह से कर पा रहे हैं. सो दैट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन. एंड उसके बाद से एनर्जीज, क्योंकि जो जो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो ये कार्ड एक्चुअली ये शो करता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो बहुत सही था एंड उससे आपके लाइफ की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है पॉजिटिव वे में. सो इट वाज अ गुड डिसीजन, आई कैन से दैट. सो आई विल से कि यू शुड नॉट वरी अबाउट इट एंड उसके बारे में आपको ओवरथिंक नहीं करना चाहिए.
एंड इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन और है कि इस चीज़ से ओवरकम कैसे करें. Like, 3 साल काफी बड़ा टाइम होता है.
आई कैन से दैट, बट इस चीज से ओवरकम इज समथिंग की ओवरकम करने की जरूरत नहीं है भाई. यू आर डूइंग इट, वो एक टाइम के साथ होता है. आई नो 3 इयर्स इज अ लॉट, बट गो अहेड. जो भी चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ को थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज टेक इट पॉजिटिवली कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो सही था. एंड ऑफकोर्स अभी तो आप उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते. एंड आई विल से अगर कुछ ऐसा टाइम आता है कि आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं तो डोंट डू इट, क्योंकि वो चीज़ आपने पहले ही सही की है. तो उस चीज़ को दोबारा आप तो अपने माइंड के हिसाब से सही करने की कोशिश करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है. तो जस्ट जैसा अभी चल रहा है, जो चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए. ठीक है यार भाई,
मतलब भाई मैं बहुत विल्ला टाइप का इंसान हूँ, मतलब जो लोग साथ में रहते हैं मेरे उनको पता है कभी कोई ऐसा इमोशनल टॉक किसी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ है, या फिर कहते नहीं है उसको लो जोन वाला बंदा, वो सब चीज़ें कभी नहीं हुई हैं। बट कभी कभी एक चीज़ हो, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं बीच बीच में, और वो रह रह के कभी कभी आ जाती हैं।
नहीं नहीं वो मैं एक्चुअली आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, सो आई बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी वेरी गुड सून।
ओके, एंड इसी नोट के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जाके आयुष गुप्ता को फॉलो करिए, जानिए टैरोट कार्ड क्या होते हैं, और कोई कोविड पेशेंट हो या फिर कोविड पेशेंट ही नहीं जो अपनी लाइफ में बहुत ही लो फेज में चल रहा हो उसको बोलिए आयुष गुप्ता से बात करें, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। एंड आई विल रिक्वेस्ट आयुष भाई कि आप एक लास्ट मैसेज दीजिए अपनी रेकी हीलिंग से रिलेटेड, एंड लोगों को प्लीज़ बताइए कि क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग, आपके पास काफ़ी ऐसे मैसेजेज आते होंगे जो देख के आपको लगता होगा यार मुझे कुछ करना चाहिए, मैं काश मेरे पास इससे ज्यादा की कैपेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती, तो मैं काफी ज्यादा लोगों की मदद कर सकता।
भाई आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब ये जो आपने लाइन बोली ना, लाइक मैंने अभी कुछ 15-20 डेज के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि लोगों से बात होते होते मैसेजेस आ रहे हैं कि दिस पर्सन इज नो मोर, या ये अब नहीं रहे, या इन चीज इन्हें ये चीज अवेलेबल होगी बट एज आई टोल्ड वो बच नहीं पाए। तो भाई दिस स्ट्रेन इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सही ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ एयरबॉर्न टाइप सिचुएशन आ रही है, जहाँ हर दूसरे तीसरे घर में कोरोना पेशेंट है, पूरी फैमिली को पेशेंट हो चुकी है, एंड बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहुत ही खास लोगों को खोया है इस पैंडमिक में, इस स्पेशली इस साल के लॉकडाउन में। तो भाई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अभी लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि ये इंजेक्शन अवेलेबल करवा दीजिए। हम लीड्स ला सकते हैं, हम लोगों को नंबर्स दे सकते हैं, बट वो इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू, मतलब या कोई भी इन्फ्लुएंसर क्या कर सकता है, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, लाइक हम सिर्फ नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं या लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी लोगों को
काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने आयुष भाई, इसी लोग के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट डेफिनेटली फ्यूचर में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो आयुष को मैसेज करो, यहाँ जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे बताओ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी चीज़ों का मेंशन हुआ है उनकी सबके लिंक नीचे हैं, एंड खासकर से वो लिंक जो कि कोविड पेशेंट्स को हेल्प हो सकती है, काइंड ऑफ हेल्प कर सकती है, एक उम्मीद रहती है, एंड काफ़ी चीज़ें जो आयुष ने बताई है वो सब कुछ सही है, मुझे पर्सनली पता है। तो प्लीज़ जाओ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक उन जरूरत उन लोगों को सेंड करो जिनको इसकी नीड है, एंड कीप स्टे सेफ एंड मास्क पहनो।
ठीक है भाई।